गिरिराज जी बाएं हाथ में और छोटे उंगली पर धारण करके बैठा। गिरिराज धर्म की महत्व कथा हम लोग आज श्रवण किया। समय संक्षेप होने के नाते कुछ कथाओं को मैं छोड़ करके चल रही हूँ, किंतु भागवत गुरु विशाल भागवत जैसे अनंत जलराशि समुद्र कितने जल है कौन नाप सकते। ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा अनंत है, कौन सा कथा छोड़े और कौन सा कथा बोले। जैसे चीनी के लड्डू है पुतली है कहाँ से ग्रहण कर छोड़ने की इच्छा ही नहीं, तथापि समय की पाबंदी है श्रृंखला भी है, उस श्रृंखला के अनुसार चलना पड़ता है। समय पर कथा को विश्राम देना और आगे की कथा को बढ़ाना। श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण के रसभरी कथा को श्रवण कराया। आसन्न मरणापन्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के निकट बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न भी किए। यार मैंने ये भी कहा था ये गोपियां भी बाला भूगंड के छोड़कर के कैसर अवस्था में प्रवेश किया और कृष्ण भी उसी प्रकार बाल्लव भूगंड और किशोर अवस्था में प्रवेश किया। कभी भी कितने सुंदर रूप किशोर रूप कैसर रूप है कौन वर्णन करें। गोपियां जब बड़ी हो गई स्वाभाविक रूप में उनके गुरुजन लोग माता पिता अथवा उनकी सास ससुर नन आदि सभी लोग कृष्ण के साथ जो आवाज जो मिला उसके लिए प्रतिबंधक लगा। गोपियां जब छोटी छोटी थी बहुत सहज सरल रूप में गोविंद के साथ मिलती थी, किंतु आज गोविंद के साथ मिलन होना बहुत कठिन। जिन लोगों ने गोविंद छोड़कर के जीवन में और कुछ नहीं देखा, कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरी माहिरे जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। चैतन्य चरितामृत में हमारे कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते कृष्णमयी कृष्ण छोड़कर कर कुछ नहीं दिखाई देता मैं प्राचुदार्थ मन जहां जहां पर दृष्टि नजर चली जाती है केवल गोविंद छोड़कर कुछ नहीं। क्यों गोविंद समर्पित आत्मा समस्त गोपियां थी। एक तो कृष्ण के साक्षात सर्वशक्ति नित्य प्रकाश प्रादिन शक्ति सर्वगुणी स्वयं श्रीमती राधिका प्रादिन आनंद कृष्ण की जो आनंद के जो स्वरूप ही श्रीमती राधिका प्रेमेशार भाव भावेर सार महाभाव महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत ग्रंथ बहुत सुंदर रूप में राधे के तत्व के बारे में वर्णन किया। राधा की कोई साधारण लड़की नहीं है स्त्री नहीं पांचवधिक शरीर भी नहीं है मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश के ये पांच तत्व के द्वारा उनके शरीर नहीं है उनके शरीर का दिव्य अलौकिक जिसके आनंद भी भरेंगे कृष्ण जैसे कहा गया सच्चिदानंदमय कृष्ण इस तरह वर्ण कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्म चिंता में कृष्ण सच्चिदानंदमय करुण के सच्चे आनंद। उसी प्रकार गोपियां भी उनके शरीर भी चित्त शरीर है
और इसमें पता क्या आनंद प्रेमी साथ भाव भागीर साथ प्रेम के साथ क्या है भाव और भाव के साथ क्या है महाभाव और महाभाव की दिव्य अलौकिक विग्रह श्रीमती राधिका इसके समझना जड़ बुद्धि के द्वारा संभव नहीं तथापि वर्णन करती जा रही ये समस्त गोपियां कृष्ण से भी अभिन्न कहा गया कृष्ण से भिन्न नहीं थी सत्य सत्य मतो हृदय अभेद सत्य और सत्यमान की भी जिस प्रकार अग्नि आग और आपकी ताप जलाने में सत्य यथा अग्नि जिच्छे जला चले आप अग्नि आग और आग से जलाने की सत्य ताप जो उसको अलग नहीं कर सकते ठीक उसी प्रकार कृष्ण और गोपी उसी प्रकार सत्य सत्यमान शक्तिमान और शक्ति जिस प्रकार कस्तूरी और कस्तूरी के सुगंध अलग नहीं कर सकते जिस प्रकार दुग्ध और उनके धवलता सफेद वर्ण अलग नहीं होता उसी प्रकार कृष्ण और गोपियों की यह नित्य संबंध नित्य ही है इसमें तो तत्व दर्शन है कि वह लीला रस आस्वादन करने के लिए दोनों रूप में ही प्रकट हुए हैं लीला रस आस्वादित भरे द्वयो राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादित भरे द्वयो राधा कृष्ण एक ही तत्व है किंतु लीला करने के लिए प्रेम रस आस्वादन करने के लिए दो स्वरूप में प्रकट हुए एक कृष्ण और एक और वो श्रीमती राधिका कृष्ण के समस्त प्रकार के समस्त प्रकार के आनंद प्रदान करने वाले इसके नाम है रागिनी रागिनी सच्चे धराय कृष्ण ने आनंद वो रागिनी आनंद सत्य कर कृष्ण के संगी आनंद प्रदान करती है आइए कथा में तत्वदर्शन स्वीकार लें क्यों आगे हम जाकर के आज राष्ट्र भी वर्णन करेंगे क्योंकि कृष्ण की सर्वोत्तम लीला है ये रास लीला है जय जो जल रस सर्व रसार पार किया भवे तथा रजी के विचार कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं सर्वोत्तम लीला है रास लीला रस शब्द की अर्थ है रसते असद्धते इति रास रस भी साधन वस्तु नहीं है कोई काम कीड़ा नहीं है स्त्री पुरुषों की काम कीड़ा नहीं है ये ऑपरेटिव दिव्यचित जगत की एक दिव्य लीला का जगत है मात्र जो प्रेम की लीला का गोपियां बड़ी हो गई इसलिए गुरुजनों ने उनके माता पिता सास ससुर सभी गुरुजनों ने कहने लगे देखो कृष्ण आज से कृष्ण से मिलना नहीं तुम बाप तुम बड़ी हो गई तुम बड़े हो गए चलो अलग अलग खेल मिलना नहीं गोपियां बहुत दुखी क्या करेंगे वो गोपियां अपने अपने गृह में रह करके गोविंद के स्मरण करने लगे कृष्ण से बिछोड़ जाना ही इसी की कहा जाता है विरह कहा विरह शब्द के अनेकों व्याख्या शब्द के अर्थ हमारे आचार्य के पाद में दे दिया भी माने विशेष रोह रमन मिलन विशेष रूप में जहां पर मिलन इसी भी यह विरह कहा जाता है विशेष रूप में माने कोई शरीर से मिलते हैं और कोई मन से मिलते हैं गोपीय मानो आज कृष्ण से मिलन कैसे हो रहे मन के द्वारा शरीर के द्वारा संभव नहीं है समान देश काल के अनुसार सब कुछ नियम पालन करना पड़ता है इसलिए समस्त गोपियां अपने अपने गृह में रख के गोविंद के स्मरण करें। इसलिए हमारे आचार्य पाद ने चार प्रकार के विवरण और चार प्रकार के विरह भी दिखाया है, उर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। विरह ही दर्शन कराना है, क्योंकि विरह के पश्चात जो मिलन होता है और उसमें अत्यंत आनंद अधिक होता है। इसके योग माया की उसी प्रकार लीला को आगे संपादन करने का सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के संदर्भ जब माधुर्य में वर्णन करते हुए कृष्ण के 64 गुणों की वर्णन करने के पश्चात चार गुणों की विशेष वैशिष्ट दिखाते हैं जो असमर्थ तत्व का होता है। इसे कोई समान तो नहीं है, उससे बराबर होता बहुत दूर की बात है, उससे अधिक की बात बहुत रूप से समान नहीं हो सकती। इसके संदर्भ में कहते हैं जीवन में कितने गुण होता है, 50 गुण होता है, वो भी अणु मात्र में, वेरी मच मॉलिक्यूलर। और जिन अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है देवताओं के माना जाता है, वो देवता में वही 50 गुण मनुष्य अपेक्षा उसमें अधिक डालता है, वही 50 गुण। और उसके आगे शिव जी में कितने गुण, 55 गुण, 55 और भगवान विष्णु में वैकुंठाधिपति नारायण में 60 गुण कहे गए। और उस आगे रामचंद्र अयोध्या में भगवान रामचंद्र में 65 गुण कहा गया। और उस आगे गुरुपति वृंदावन चंद्रसेन भगवान विष्णु में परिपूर्ण मात्रा में 64 गुण विराजमान। कितने गुण, 64, वो भी अनंत जलराशि समुद्र के भांति विराजमान, केवल 64 गुण एक समान रूप में हो, उसमें भी चार गुण जो है वो विशेष दिखाया गया। ठीक है,
अरे काल तो सो गया थे, आज तो भागी गए, कहाँ गए भैया, अरे माइक में, काल तो बैठे बैठे सो गए और आज तो सोना नहीं कटे।
भगवान पर हो जाता है कथा में जो फ्लुएंस है उस पर झुका पर हो जाता है। हम क्या बोल, चार विशेष गुण जिसे कहते हैं कृष्ण में विशेष जो चार गुण, एक है रूपमाधुर्य, इतने कृष्ण के सुंदर रूप वर्णन करना संभव नहीं है, वो तो केवल गोपियां ही वर्णन कर सकते हैं, दूसरे के लिए संभव नहीं है। इसे कहते हैं रूपमाधुर्य, इतने सुंदर रूप जिस रूप के देख करके सभी आकर्षित हो जाते हैं, सुंदर कृष्ण की दिव्य, दूसरे की भी छोड़ दिए कृष्ण के जितने भी अवतार आदि है और कृष्ण के और देखकर सभी आकृष्ट हो जाते हैं। अवतार की बात छोड़ दीजिए, स्वयं कृष्ण भी अपने रूप के जैसे शीशे में अथवा प्रतिच्छवि देख करके आश्चर्य, मेरे इतने सुंदर रूप वृंदावन की गाय से लेकर के पक्षी से लेकर के वृक्ष आदि से लेकर हिरण आदि सब आकृष्ट। साईं कृष्ण ने अपने परछाई को देख करके सोचते कितने सुंदर अपरिवर्तित, साईं कृष्ण अपने रूप के देख करके आलिंगन करना चाहे इतने सुंदर रूपमाधुर्य जिसे गोपियां भी वर्णन करते हैं, गोविंद कितने सुंदर रूप माधुरी, क्या नहीं।
अक्षरदान परमिरम विनम्रम न परम विदाम
रुपया कर रही है शायद राधा जी कर रही है।
आंखों के फल क्या है ऐसे सुंदर रूप दर्शन
अक्षरदान फलमिदम
न परम विदाम
आंखों की फल ऐसे सुंदर दिव्य अलौकिक गोविंद के रूप दर्शन
लीला माधुर्य गोविंद के इतने सुंदर जो दिव्य अलौकिक लीला
आगे जाकर के सो
प्रेम माधुर्य अपने प्रियजन के प्रति नित्य जन के प्रति ऐसे प्रेम अनुभव न भूत न भविष्य और चतुर्थ के फोर्थ वेणुमाधुर्य गोविंद की बंसी के ध्वनि इतने मिठास है इतने मधुर है सभी के चित्त के मन को जो है हरण कर और सभी स्थावर जंगम बन जाते हैं जंगम स्थावर बन जाते हैं जो चलने वाले हैं वो स्थिर हो जाते हैं और जो स्थिर वस्तु चंद्र बनी वो चलना शुरू कर देगा वैपरीत गदान हो जाता है गंड के इतने वंशित धनी आइए जिस कथा को हम जान हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद भागवत में वेणुगीत की बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया मंत्र चाहते हैं बस आगे क्या बढ़े इसी कथा में डूब जाए जीवन की तात्पर्य क्या है भगवत कथा में तल्लीन हो जाए गोविंद के वेणुगीत ध्वनि इतने सुंदर वो समस्त गोपियां गृह में रह करके घर में रह करके एक सखी दूसरे सखी के जय गोविंद के रूप माधुर्य वेणु माधुर्य की कथा वर्णन करने लगे शरद काल आने के साथ ही साथ जिस प्रकार नदी नाले पोखर सरोवर के जल जैसे स्वच्छ निर्मल हो जाता है इत्थं सर्वं स्वच्छ जलं पदमातरं सुगंधिनं नाविशत वायुनं पापं सह गोपो गोपाल पच्छुतम सुखदेव गोस्वामी बात करने लगे महाराज परीक्षित जिस प्रकार शरद काल अटन से शरद काल आने के साथ ही साथ समस्त नदी नाले पोखर के जल कैसे हो जाते हैं स्वच्छ निर्मल स्फटिक पद हो जाता है बरसात के समय जब घनाघोर बारिश हो उस समय वो समस्त सरोवर पोखर नदी आदि के जल कैसे होते हैं मैला होता है किंतु जब शरद काल आने के साथ ही साथ वह जल निर्मल स्वच्छ हो जाता है मिट्टी आदि जो है वो सब नीचे चल जाते हैं और स्वच्छ निर्मल जल आ जाता है और उस समय कमल आदि पुष्प आदि अपने आप विकसित होकर के एक अपरूप धारण कर लेते कमल की केसर आदि की तरह वो जल इतने सुगंधित हो जाता है और स्वयं पुष्प आदि विकसित होकर के अपने सुगंध की जो है वायु के द्वारा प्रवाहित करके भ्रमर के जो है निमंत्रण करके ले जाता है और भ्रमर मधुमक्खी भ्रमर आदि वो समस्त पुष्प के ऊपर बैठ करके मधुशंकर करते हैं और गुंजन ध्वनि करते रहते हैं गुन 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 ध्वनि करते रहते गुंजास करते रहते और ठीक उसी समय गोविंद अपने सखाओं के साथ गोचारण के लिए जाते और आगे आगे सामने को गाय बछड़े फिर पीछे ग्वाल बाल सुबल सिदाम आदि ये समस्त सखा लोग हई हई रही 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 करते करते ब्रजभाषा में चल इसके पश्चात बलदेव प्रभु और पीछे कृष्ण गोविंद
और पवित्र जब बंसी वादन करते हैं तब सभी लोग स्थिर हो जाते हैं। ब्रज गोपियां अभी अपने अपने गृह में विराजमान है। मैंने कहा उनके माता पिता गुरुजनों ने आदेश जारी कर दिया ये आज से गोविंद से मिलन नहीं, इसलिए वो समस्त गोपियां अपने गृह में बैठ करके मानो ध्यान नेत्र से अपना प्रदीप नेत्र से गोविंद के रूप दर्शन करने लगे। और वो गोविंद के रूप दर्शन करके एक सखी दूसरी सखी के वर्णन करने लगे। तद ब्रजस्त्रिय आसुत गोविंद वेणु गीतम स्मरोदयम काचित परक्ष कृष्ण तसके अभ्यम अवर्णन सुदेव गोस्वामी पाठ करने लगे। महाराज पर के गोविंद जब बंसी वादन करते हुए गोचारण के लिए आते वो समस्त गोपियां बहुत दूर से गोविंद के दर्शन भी करते जैसे छत पर चढ़ जाते यही वृक्ष के आड़ पर खड़े होकर के गोविंद के ऐसे सुंदर रूप दर्शन और गोविंद के रूप दर्शन करके बस तन्मय हो जाते हैं। पर गोविंद के रूप कैसे बरहा भीड़ं नट बारबो कन्नयु कर्णिकारं बिभ्रत वासो कनक कपीशं वयन्तीं च मालं रन्नान वेणुरगर सुधयं पूरयन गोपविंदे विन्नारणं सपद रमणं राविसर विजकीर्ति राधा जी वर्णन कर रही सचिव गोविंद कितने सुंदर दिखता अपने दिक्कत भी हम स्त्री जाति होने के नाते गोविंद जी निकट में बैठ करके निकट में जाकर के गोविंद के रूप दर्शन कर सकते। एक सखी कहने लगे सखी सुना वो गोविंद के रूप कैसे है कहते बरहा वीरम जिनके मस्तक पर सुंदर जो है पगड़ी और उस पगड़ी में क्या है मोहि पंख लगे इतने सुंदर मोहि बरहा वीरम नटो प्रभु कैसे नित्य कवापी भवति और त्रिभंग होकर के सत्य जा तिरछी नजरों के द्वारा सभियों के चित्त भी है आकर्षित कर बंसी वाला विप्रत वास कमलकुशन वैजंती माला कैसे सुंदर पीले वस्त्र धारण करते और गोपियों के द्वारा ग्रथित गति गति हुई सुंदर वैजंती माला वैजंती माला स्वीकार जो है जिसमें पांचों प्रकार पुष्प के द्वारा वो माला बनी इतने सुंदर माला गोविंद बक्स पर धारण कर रंधान वेणु रघु सुदेव पुरेण गोपविंद अहो कृष्ण जब वो बंसी के जब अधर और कोष्ठक पर रखते हैं अधर की चीज कहते हैं ऊपर के भाग का जाता है कोष्ठ नीचे भाग अधर का जाता है और उसी बीच में रख करके गोविंद जब काम छोड़ते हैं और उस धनी के सुन करके सभी की हृदय कैसे भिन्न जाते हमारे आचार्य बात कहते हैं गोविंद के बेनु धनी कहां तक चले जाते मर्त लोक से आगे चले जाते स्वर्ग लोक में जाकर के जहां पर सुंदर सुंदर देवियां अस्पराई पारिजात पुष्प आदि चयन करते चुनते और गोविंद के बेल धनी सुनते ही उनके हस्त से हाथ से वो समस्त पारिजात पारिजात पुष्प अपने आप और इतने ही नहीं गोविंद की विरुद्ध धन के इतने सत्य काम है सारे वस्त वस्त गोपियों के हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं। उस समय उनके समस्त वस्त्र आदि अस्त व्यस्त हो जाते हैं। किसी प्रकार से अपने वस्त्र आदि को धारण करके अपने गृह में आते गोविंद के विरुद्ध धनि एक कथा क्या वर्णन बोल वर्णन कर। इसलिए यहां पर कार्य रंगानो बेनो पदर सुदय पूर्ण गोविंद वृंदावन सुपद रमण प्राविष्ट कृति कृति। और गोविंद जब वृंदावन में विचरण करते चलते हैं और उस समय गोविंद के चरण की छाप है फुटप्रिंट्स और धूल में अपने आप लग जाए जिसमें ध्वज वज्र अंकुश आदि एक 19 प्रकार के जो चिन्ह आता है। हमारे आचार्य की बात करते हैं कृष्ण के चरण में कितने चिन्ह है 19 कहा गया और राधा जी के चरण कमल में कितने 21 चिन्ह कहा गया। विभिन्न पुराण में विभिन्न प्रकार में वर्णन है। किसी पुराण में कहते हैं 19 किसी पुराण में कहते 21 किंतु गुरुदेव की मान्यता है कि कृष्ण के चरण चिन्ह कृष्ण के चरण में कितने चिन्ह है 19 चिन्ह और राधा जी के चरण कमल में 21 चिन्ह के चिन्ह पद्म पुराण आदि विभिन्न पुराण में मत्स्य पुराण में विभिन्न रूप में वर्णन किया। फिर गोविंद जब वृंदावन में चलते हैं विचारण के लिए और ऐसे सुंदर दिव्य अपराजित चरण चिन्ह के देख करके ब्रह्मा आदि ब्रह्मा शिव नारद आदि समस्त दिक्पाल वृंदावन में आकर के वह चरण चिन्ह के लिए पूजित कर पूजा करते रहे। गोविंद के चरण चिन्ह कितने सुंदर वृद्ध ही हमारे जीव को सही बात वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी नित्य प्रत वृंदावन में आकर के गोविंद के चरण चिन्ह के लिए पूजा करते रहे। पति को वृद्ध ही श्लोक में आ गए पति को अर्थात वृंदावन ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता को जिस चरण के जो पूजा इतने सुंदर बोले वृंदावन की प्रतिमा क्या है जहां पर गोविंद के चरण चिन्ह गोविंद की इतने मधुर मां लगे। इसलिए गोपी गीत में नहीं कहते हैं आगे जाकर के वर्णन करेंगे विरह दशा में गोपिया नहीं कहते हैं वृंदावन की महिमा क्या है। जयत देव अधिकांग जन्म नाम ब्रज श्रयत इंदिरा शशदत्र ही दैत दीक्षता दीक्षुता होता आश्रता गोविंद वृंदावन की महिमा तो इसलिए है जहां पर गोपियों की प्राणकांत गोविंद की ऐसे सुंदर दिव्य अलौकिक चरण चिन्ह के द्वारा भूषित होते हैं। वृंदावन की ध्वनिकरण की सामान्य ध्वनिकरण नहीं चिंतामणि प्रकट सदृश कल्पवृक्ष लक्षावृत सुरभि रवि वृंदावन में वृक्ष आदि के कल्पवृक्ष माना जाता है धूल चिंतामणि स्वरूप चिंतामणि प्रकट सदृश कल्पवृक्ष लक्षावृत सुरभि रवि जहां पर वैकुंठ के नारायण उनके लक्ष्मी आदि आकर के जहां पर वृंदावन में झाड़ू देकर के अपने सौभाग्य मानते हैं। कोई वृंदावन की साधन वस्तु नहीं भूमि चिंतामणि गण में त्वयम अमृतम कथा दानम नट्टम गमन गोपी वंशी प्रियश ब्रह्म सिंह में इस तो वर्णन किया आई वृंदावन की कथा गोपियां कहने लगी देखो सखी वृंदावन की महिमा क्या वर्णन कर हमारे प्राणकांत गोविंद ऐसे रूप और ऐसे विरुद्ध ध्वनि का प्रकाश कर जब विरुद्ध ध्वनि के द्वारा सबके घर आकर्षित कर लिया। वृंदावन सखी हो बीतनो दिकित जन देवो की सुतो पदा जनाब्द लक्ष्मी गोविंद पेनु नमत मयूर नित्तं प्रेक्षं नत्र दिशं न परतं समस्त सत्तम कहने लगे वृंदावन सखी हो बीतनो दिकित अहो वृंदावन की कीर्ति महिमा क्या वर्णन कर महिमा कौन वर्णन कर सकता वृंदावन वृंदावन सदगुरु की कीर्ति जद देव की सुतो पदार्थ लक्ष्मी देव की नंदन कृष्ण यहाँ पर देव की नंदन करने से क्या समझना चाहिए जसोदा दे नाम ने अंत वाजा देव की जसोदास नंद महाराज के पत्नी जसोदा की दो नाम एक है देवकी और दूसरी जसोदा इधर दे नाम ने नंद भाज्या देवकी जसोदा हरिभक्ति एक हरिवंश पुराण में इसका प्रमाण है जहां जहां पर गोपियां कृष्ण के देवकी नंदन का करके पुकार समझना चाहिए वही जसोदा नंदन इन गोपियों की प्राणदान कौन जसोदा नंदन जब हमारे प्राण कांत गोविंद जब गणत ध्वनि करते मयूर मयूरी गिरिराज गोवर्धन की ऊंचे स्तर से नीचे उतर करके आ जाते और बिल्कुल गोविंद के सानिध्य में निकट में आकर के फैला करके नृत्य करना शुरू कर देते गोविंद बिन उन्मत्त मयूर नृत्य समस्त सत्यम और गोविंद के विरुद्ध सुनकर के सभी शक्ति भाव धारण कर शक्ति विचार कर देते सब स्थिर हो जाते सुंदर कहते हैं देखो पशु पक्षी भी गोविंद के विरुद्ध नहीं सुन करके कैसे हो जाते हैं सुनो गाय वृंदावन की गाय कैसे गायों की कथा वर्णन की जाती है अब कृष्ण विरुद्ध नहीं करते हैं कदम गावश्य कृष्ण को निर्गत वेणु गीतम पीयूषम तम अभित कर्ण पुटे पिबंत स्वाद सुत स्तन पाय कबलास स्म दस्तु गोविंद आत्मनि त्रिषा अश्रु कला कृष्ण अब वो गोविंद के विरुद्ध ध्वनि सुन करके वो समस्त वृंदावन की गाय स्थिर हो जाती है घास खाना बिल्कुल चिवाती नहीं घास चिवाती नहीं थोड़ी घास खा रही थी कोई गाय कोई गाय घास खा रही थी और इतने समय गोविंद के विरुद्ध ध्वनि सुनाई पड़ी बस वो गाय क्या करने लगी जिस दिशा से कृष्ण विराजमान होकर के खड़े होकर के वंशित ध्वनि कर रहे बस उसी तरफ गोविंद के दर्शन करने लगे और कानों के ऐसे खड़ा कर दिया उस कानों के द्वारा गोविंद के विरुद्ध ध्वनि को मानो पान करने लगे अमृत अब गोविंद के विरुद्ध ध्वनि ऐसे सुंदर मधुर अमृत है उसके पान करने लगे और गोविंद की विरुद्ध ध्वनि पान करके वो समस्त गाय की कैसे दशा बनी उनके चित्त द्रवीभूत हो गए पिघल गए आंखों से आंसू की धारा टपकने लगे मानो एक मुक्ता की झारी गिरने लगे अर्थात गाय की आंखों की जो पशु जब गिरने लगे ऐसे लग रहे मानो एक मुक्त की आहो कैसा सुंदर घास अंदर चला गया कुछ घास बाहर है ऐसे स्थिर हो गए जिस प्रकार कोई चित्रकार दीवार पर जैसे चित्र शिल्प करते गाय की कोई चित्र करते जैसे आप लोग देखेंगे श्याम रानी की चित्र नहीं होता गाय की चित्र इतने सुंदर से कलमश उसी प्रकार वो गाय के हो गए स्थिर हो गए विचार हो गए और किसी समय बछड़े स्तनपान करने लगे गोविंद के जन्म सुनकर के वास दावश्य वो गाय के बछड़े क्या करने लगे दूध पान गाय के थन से तो दूध निकल कर क्या किंतु बछड़े दूध पानी करने के लिए उनके मुंह के पास टपक टपक करके गिर गया अभी एक दिन दो दिन के नई नई बछड़े नाचने गोविंद के ऐसे सुंदर रूप और बिनु धनी सुंदर के कैसे होते यहां तक में कहने देखो प्राय वतन को मुने यो गिहगा वृंदावन अस्मिन अहो वृंदावन की वो समस्त पक्षी आदि के देखो कैसे वृंदावन की ऊंचे ऊंचे वृक्ष के शाखाओं के ऊपर बैठ गए पक्षी आदि बैठ करके गोविंद के रूप दर्शन करने लगे जब कृष्ण वंशी वादन करने लगे वो समस्त पक्षी आदि गोविंद की वंशी के ताम के साथ स्वर मिला करके कुछ कीर्तन करने लगे जब कृष्ण पंचम स्वर से कीर्तन करने लगे और वो पक्षी भी मानो कृष्ण के भिन्न ध्वनि के साथ मिला करके कीर्तन करने लगे जब कृष्ण सप्तम स्वर से सेवन स्टेज में चले जाते और वह समस्त पक्षी पक्षियां क्या करते हैं स्थिर हो जाते हैं इसलिए गोपियां कहती हैं प्रायो प्रायो पतंग को मुनयो वियोगा बने अस्मिन् कृष्ण चित्त प्रदीपितम कलवेनु गीतम आरुज्यते ध्रुम भुजान रुचिर प्रबालम सुनन्ति मिलित त्रिशो विदस्तान वाच तस्थिर हो जाते जिस प्रकार मुनि ऋषि निश्चल होकर के एकांत स्थान में स्थिर होकर के बैठ जाते हैं ठीक उसी प्रकार वृंदावन की वह समस्त पक्षी आदि स्थिर हो जाते हैं यह तक नहीं कहने लगे सखियों देखो हिरण और हिरणी धन्नात्म मूलत हिरण एता जन नंदन पात्र विचित्र वेशम अकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा सुखदेव गोस्वामी बात कहने लगे महाराज परीक्षित कृष्ण जब वंशी वादन करते उस समय हिरणी और हिरण दोनों ही जो है गोविंद की तरफ दौड़ते चलते पशु जाते हैं हिरणी और हिरण दौड़ करके जाते इतने दौड़ करके चलते जा रहे हैं और चलते चलते दोनों ही गोविंद गोविंद के सानिध्य निकट में आकर के गए और गोविंद का ऐसे सुंदर रूप अपरूप दर्शन करके मोहित पशु जाते बोल दी किंतु भाव नेत्र के द्वारा गोविंद के रूप के दर्शन करके मानो अपने हृदय में स्थापित कर रहा इधर धन्नाथ को मुड़ा करते हुए हिरण्य एता सुखदेव गोस्वामी पाद जब इस कथा को वर्णन कर रहे साक्षात रूप में वह अपराक्त दिव्य लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं और उस कथा को बोल रहे हैं वक्ता तो ही है वह वक्ता है जो साक्षात उस लीला को दर्शन करके कीर्तन सुखदेव गोस्वामी पाद जब वर्णन कर रहे हैं इसलिए हमारे टीकाकरण वर्णन कर रहे हैं एता शब्द कर दिया संस्कृत में एता उंगली निर्देश कर रही है देखो धन्नात्मो मुरुगतो हिरण्य एता एता शब्द संस्कृत है क्या समस्त हिरण अथवा हिरणी देखो उंगली निर्देश कर पर साक्षात मानो उस लीला को दर्शन कर रहे हैं और होते जा रहे हैं देखो हिरण और हिरणी दूर की जा रहे पहले हिरणी फिर मैं वो दूर करके चल रही है गोविंद दर्शन के लिए पीछे हिरण कहने लगे देखो
गोविंद दर्शन भगवत दर्शन ये सबसे बड़ी पुण्य कार्य है, पुण्य कमाना है तो कैसे चलना चाहिए? अकेला नहीं, परिवार के साथ चलो। यदि वह बच्चा नहीं है कोई भी बात नहीं, पति पत्नी दोनों साथ में चलना चाहिए। आचार्य वाटिका में वर्णन करते जा रहे हैं, पत्नी कह रही है हमारे पास समय नहीं है, तुम्हारी अपेक्षा की है, और पति दौड़ करके चलो पीछे पीछे। अरे मेरे लिए तो रुको, बोले रुकने के समय नहीं है। गोविंद कैसे सुंदर रूप दर्शन करना, नाजरी गोविंद वनम वर्णन करे, गोविंद नाजरी एक वन से दूसरे वन चले जाए तो हम गोविंद के कैसे दर्शन करेंगे? इसलिए हिरणी और स्त्री वो दौड़ करके जा रहे हैं। धन्नाथ मोह मुरग गयो हिरण्य एका, श्रीमती राधा जी काली है विरह में, देखो हम स्त्री जाति होने के नाते, मनुष्य जाति होने के नाते गोविंद दर्शन से हम वंचित हो, किंतु देखो ये पशु जाति हिरणी गोविंद दर्शन के लिए कैसे दौड़ रही है। हमारे गुरुजन माता पिता सास ससुर गोविंद दर्शन के लिए बाधा दे, किंतु देखो पशु जाति होकर के गोविंद दर्शन के लिए देख कैसे दौड़ रही है। इसमें राधा जी से विरोध दशा में कार्य है, ये सभी हम कौन सा आराधना करें, कौन सा तपस्या करें, ये मनुष्य शरीर को त्याग देकर के यदि मेरे पशु जनि प्राप्ति हो तो मेरे जीवन धन्य होगा। क्यों? ये पशु मनुष्य जनि होने के नाते समाज हमारे प्रतिबंध है, माता पिता गुरुजन ये प्रतिबंधक ऑब्स्टेकल साध है, किंतु देखो हिरण हिरणी गोविंद दर्शन के लिए जा रही है क्योंकि कोई बाधा करने वाला नहीं है। इसी कहते हैं महाभाव दर्शन, इसी कहा जाता है तिरजग ज्वनि प्राप्ति लालस आए। महाभाव दशा में छह प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, समय आने पर बोलने के प्रयास करेंगे। यही महाभाव दशा में एक लक्षण कहा जाता है क्या, तिरजग ज्वनि मनुष्य जनि अपेक्षा इतर जनि पशु जनि प्राप्ति करने के लिए भगवान की प्रार्थना, ब्रह्मा आदि के देवता के निकट प्रार्थना करें कि स्त्री शरीर विशेष रूप से स्त्री शरीर होने के नाते हम गोविंद के सन्निकट में नहीं जा सकते। देखो सुवर सीधा कभी सखाओं के भी देख करके राधा जी ईर्षा प्रकाश करते हैं, भाव प्रकाश करते हैं। सुपर श्रीराम कैसे सच्चल रूप में बिना बाधा, कोई बाधा डालने वाले नहीं है, और गोविंद के आलिंगन करते हैं, गोविंद के कानों पर चढ़ जाते हैं, गोविंद के जो है अपने झूठन खिलाते हैं। देखो सखा ये फल अतीब सुंदर स्वादिष्ट अभिष्ट है, आधा फल खा ली और आधा फल गोविंद के खिलाने, गोविंद कैसे भाव के द्वारा कृष्ण सखा के आलिंगन। इसलिए उस समय राधा जी कहती है हे विधाता, यदि मानव जन्म देना है तो पुरुष जी दे दीजिए। क्यों? ऐसे गोविंद के प्राप्त करके हम गोविंद की मिल नहीं सके, सुबह स्थान कोई बाधा देने वाली नहीं, कोई टोकने वाले नहीं है। हम समान रूप में गोविंद के सन्निकट में चले जाए तो कहते कहां जा रही हो, लज्जा शर्म नहीं है, थोड़ा घूम के उठा करके देखे तो कोई नहीं कोई टोक ना शुरू कर, किंतु देखो सुपर सिद्धांत जब जाते हैं कोई बाधा नहीं। इसलिए कड़ी राधा जी सीता दशा में विरह दशा में कह रही है सखी धन्नाथ हिरण्येता जानन पात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणित सह कृष्ण सारा। गोविंद के वेणु धनी सुन करके कैसे गोविंद दर्शन के लिए जा रहे,
जीवन की साथ है सह कृष्ण सारा, कृष्ण सार। जीवन की साथ क्या है? धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार हमारे जीवन की सार नहीं है। ये दो दिन के चांदी रात फिर अंधेरा, चार दिन के चांदी आज है काल में है। जीवन की सार है गोविंद के दर्शन, गोविंद की सेवा। जीवन में यदि भक्ति नहीं किया तो क्या है? कुछ नहीं है, बेकार है। इसलिए हमारे मृदंग को बजाने के समय क्या शब्द होता है? क्या होता है? धिक तान, धिक तान, धिक धिक धिक। जिस लोगों ने गोविंद के दर्शन नहीं किया, गोविंद के भजन नहीं किया, उनके जीवन व्यर्थ। धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार तो दिन दिन चला, आंख बंद हो जाए बस उनके साथ क्या संबंध है? शरीर में जितने भी अलंकार है वो सारे अलंकार जो है उतार लेंगे। हमारे भक्तिवान ठाकुर भी कीर्तन में वर्णन करते हैं, जितने सुंदर अलंकार के तुम सज्जित हो जाओ, हीरे जहरत मणि मुक्ता स्वर आदि अलंकार के द्वारा, किंतु जब तुम्हारे प्राण वायु निकल जाएगा तुम्हारे परिवार जन क्या करेंगे? सारे अलंकार आदि को उतार देंगे। अब तुमको कितना जमीन दे देंगे, कितना जमीन देंगे तुम्हारे? बस चीता है उसे सोने के लिए जितना ही है, वो भी हाथ और पैर को क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं। देखा कभी जब अग्नि दाह संस्कार होते हैं? शायद आप लोग देखे होंगे, बहुत सुंदर बिस्तर बिछाया लकड़ी देख रखे हैं, अबर खबर गुरुदेव भी बंधन करते थे, याद है इस कथा प्रसंग में, अबर खबर लकड़ी को ऐसे कर देते, फिर तुम्हारे शरीर को मैं पर लेता लेते वैष्णव में तो उनसे सिर क्या बोले मुंह के ऊपर करते हैं, और जहां पर समाप्त आदि विधि में मुंह के क्या कर देते हैं? नीचे कर देते हैं, बोले अग्नि मुंह में अग्नि देता है। और कितने जमीन देता है? तीन हाथ से ज्यादा नहीं, तुम तो साढ़े तीन हाथ हो, और तुम्हें जमीन दिया कितना? साढ़े तीन हाथ और बाकी कहां गए? पर तुम्हारे पैर को मोड़ दिया और फिर उसके ऊपर आठ दस लकड़ी ऐसे रख दिया कि तुम उठ न सके और फिर आग जला से, यही तुम्हारे जीवन की वैराग्य की होनी चाहिए। वैराग्य की कथा वर्णन करते जा रहे वैराग्य यही है। इसलिए कहें गोपियां भी उसी प्रकार कहते हैं धिक्तांग धिक्तांग, तुम्हारे जीवन हमारे जीवन धिक्कार है। ये गोविंद दर्शन हम कर नहीं पाए, गोविंद के संग प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए धन्नाथ मृगते हिरण्येता जन्मपत विचित्र वेशम आकर्ण मनोरणितम सह कृष्ण सारा, कृष्ण सार जीवन की सार में है कृष्ण भक्ति। यदि जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं की तो सब बेकार है। एक दिन है एक दिन सब तुम्हारे नाता हम सभी देखते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि आश्चर्य सबसे आश्चर्य वस्तु क्या है? युधिष्ठिर महाराज जक्ष वग्र भी जक्ष यही तो प्रश्न पूछा कि आश्चर्य पहले प्रश्न पूछा इस संसार के आश्चर्य वस्तु क्या है? पंडित पूछते हैं वो क्या है? हम देख रहे हैं नित्य प्रत्यह कितने लोग शरीर छोड़ करके संसार में जा रहे हैं, उनके शरीर को जला रहे हैं और दिन और रात्रि जीव के दुख भोग रहे हैं। जैसे कढ़ाई में गर्म कढ़ाई में जैसे चावल अथवा गेहूं के जैसे भूलते हैं। उसी प्रकार माया आदमी आदिदेवी आदिभूति त्रिता के द्वारा हम भूल रहे हैं, हम देख रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, किंतु तथापि हमारे मन में एक आशा है सुख प्राप्ति करें। सुख के लिए हम करते जा रहे हैं किंतु जीवन में अंत में क्या है, दुख भोग। इसलिए आश्चर्य है सभी लोग मृत्यु की तरफ जा रहे हैं किंतु हम नहीं सोच रहे हैं जीवन की एक ही तात्पर्य है कभी न बजा कृष्ण सारा। इसलिए राजा जी कहते हैं देखो सखी ये हिरण की जन्म कैसे सार्थक है, सच्चे सोच दिया राजा क्या क्यों गोविंद के साथ निकट में बैठ जाते हैं और गोविंद उनकी पीठ पर थपथपाते हैं और गोविंद के श्री हस्त कमल स्पर्श प्राप्त करके और उनके हृदय में क्या हो रहे हैं, हिरण के हृदय में रोमांच कंपास और वैगुण्य और शादी विकार गोविंद के हस्त कमल प्राप्त करके क्यों नहीं बोला रामायण में देख रहे थे जब लवकुश रामचंद्र के सभा में जब पधारे और उस समय रामचंद्र लव और कुश के सिर पर जब हाथ रखे रख ऐसी बात देने लगे कि उन्होंने सुंदर कीर्तन सुनाया सारी अयोध्या की कथा बिना कथा अत्यंत सुंदर सुस्तर कीर्तन कर रहे सभा में सभी लोग रोने भी लगे आनंद में अश्रु विसर्जन कर दिए। स्वयं रामचंद्र ने लव के ऐसे चरित कथा रामायण कथा सुन करके मुक्त हो गए। उस समय रामचंद्र लव और कुश के लिए सिर पर हाथ लगे उस समय भगवान रामचंद्र के हस्त कमल प्राप्त स्पर्श करके लव कुश के हृदय में क्या हो गया प्रेम संचार आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। उस समय भगवान रामचंद्र लव कुश के कहने लगे तुम लोग क्यों रो रहे हो, वास्तव में पृथ्वी सुनहर पहली बार पिताजी के स्नेह प्राप्त कर रहे हैं इस कथा को उन्होंने गुप्त रखा इसके तो लव कुश ने कितने सुंदर चतुरता के साथ हरि क्लेवर ने क्या उत्तर दिया जी राजा के वरद हस्त यदि किसी के सिर पर आ जाए क्यों आनंद नहीं होंगे किंतु वास्तव क्या है भगवान की सुंदर हस्त कमल यदि स्पर्श पाए स्पर्श प्राप्ति करें आनंद की विकार प्रेम की विकार उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में ही कहते जा रहे हैं जब कृष्ण वह हिरण और हिरणी के पीठ पर से तप्त पाने लगे और आंखों से आंसू की धारा बहने लगे प्रणयम लोकनम और हिरण हिरणी गोविंद के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे प्रिया प्रियतम के साथ आंखों के इशारे के द्वारा ही व्यवहार आदि करते हैं। यह पर माधुर्य और श्रृंगारस की कुछ कथा वर्णन दी जा रही है राधा जी भाव नेत्र से इसी को वर्णन करते जा रहे हैं। प्रेम ऐसे को प्रस्तुत है प्रेम कभी सीधी रास्ते में नहीं चलती है प्रेम कैसे चलती है वक्र नजर से वक्र टेढ़े मेढ़े दृष्टि होता है प्रेम किसी से हो जुवा जुवती में जब प्रेम हो रहा है वो प्रेम की गति कैसे चलती है वक्रता वक्रता मानी टेढ़े मेढ़े में चलती वही बोलना नहीं चाहता हूं वास्तविक सत्य इस जड़ जगत में भी दिखाया जाता है एक युवक और जगत के साथ जब प्रेम हो जाता है प्रेम की नजर जो है दृष्टि जो है सीधी नहीं वो कैसे चलती है टेढ़ी मेढ़ी बना जैसे नदी की जल धारा टेढ़ी मेढ़ी हो करके दोनों तट के तोड़ फोड़ करके उल्टी सीधी होकर चलती कभी टेढ़ी मेढ़ी जथा वही नहीं वही बोल जिस प्रकार सांप जैसे चलती है सांप जैसे चलती बड़े प्रेम की नजर से देखा। आइए कथा में गविंद की गरुड़ को और मधुर है कहां वर्णन कर रहे। इस प्रकार कृष्ण वृंदावन में गिरुआ बन गया। आदि कथा हमारे सुखदेव को समीप करने लगे। हे महाराज परिखे, गोपियों के मन में एक ही भावना होने लगे, ये गोविंद के साथ में कैसे अंग संगात का। वस्त्र हरण लीला के समय स्वयं कृष्ण गोपियों के लिए एक वरदान दे दिया। हे गोपियों, अबला आप लोगों ने मुझे स्मरण करके और आप लोग इस सारी हृदय में जितने भी काम है वो सब नष्ट हो गया। मज्जा सीता दिया मुझे कोई अभिष्ट हो जाए, यह पर कार्य लोग कहते हैं कि काम क्रोध के कैसे नष्ट करें। सबसे हमारे बड़े शत्रु कौन है? काम और क्रोध नष्ट नहीं होगा, इसके जय करना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा आदि पर नारद शिव आदि वरुण देवताओं भी पराजित हो जाते हैं। जितने मुक्त पुरुष है लोग शिक्षा नहीं देते। शिव जी तो मोहिनी को देख करके बस दौड़ने लगे। कथा मोहिनी मोहन लीला की कथा है। ब्रह्मा जी भी अपने कन्या को संध्या को प्रकाश करके और उसके पीछे दौड़ने लगे। नारद आदि की कथा भी इसी प्रकार वर्णन है, लीला दिखा रही है। कैसे फिर काम क्रोध की कैसे कैसे जी इतने समझ नहीं। बड़े बड़े देवता भी दुष्प्राप्त कहा गया संभव नहीं है, किंतु भगवान ये पर कह रहे यदि काम क्रोध के जरिए जीतना है तो एक ही उपाय कहते हैं मज्जा तो ध्यान मुझे अरिष्ट हो जाए, बस अपने मन तन मन मेरी मुझे अरिष्ट हो जाओ मज्जा कर दिया तो क्या होता है? तुम्हारे हृदय में जितने प्रकार के काम क्रोध आदि है वो अपने आप ध्वंस हो जाए। जिस प्रकार कहते हैं बजिता कथिता माना वीर नाशयते, जिस प्रकार धान अथवा गेहूं यदि गरम बालू में यदि इसको क्या कर लिया जाए भून लिया जाए, पुनः उसके यदि वो भुना हुआ गेहूं अथवा चावल धान के यदि पानी में डाल दिया जाए वो अंकुरित होगा क्या? नहीं होगा। क्यों ना? उसे जब भून लिया उसके अंकुर को क्या हो गया सब। इसलिए भगवान इसी श्लोक के कार्य भगवान कहने लगे हे गोपियों मर्जाव सीता दिया काम बीज ना सहते मुझे प्रति कोई अभिष्ट हो जाए काम को अपने आप नष्ट हो जाए। जिस प्रकार भुना हुआ गेहूं अथवा चावल भूलने भूल के गर्म बालू से जैसे भूल लेते फ्राई करने से उनके सारे अंदर में सब कुछ भूल जाते नष्ट हो जाए, पुनः जब उसके पानी में डाल दिया जाए तो कभी अंकुरित नहीं होगा। इसलिए भगवान कहने लगे हे गोपियों आप लोग मुझे प्राप्ति करने के लिए जो मेरे साथ अंग संग आदि प्राप्ति करने के लिए जो आप लोग जो मनोवांछा अगले स्थान पूर्णिमा में मैं पूरा करूंगा। उस समय कृष्ण की उम्र था 6 साल किंतु कृष्ण जब दूसरी साल 7 साल में हो गए तब इंद्र ने कह दी ब्रज में उपद्रव मचा दी हलचल मचाया। जैसे काल में इंद्र के उत्तंडता देख करके स्वयं भगवान महावीर के साथ स्वयं भगवान इस गिरिराज गोवर्धन को उठाया और उनको चुनौती दिया सिंह भगवान सब बाएं हाथ और छोटे उंगली के साथ ऐसे विशाल गिरिराज गोवर्धन
सात दिन सात रात तक कृष्ण राज गोवर्धन जी धारण करें, इंद्र संवत तक बादल के द्वारा इतने वर्षा करते बिजली आदि कड़क किंतु कुछ बाल बका नहीं सकते। इसलिए उसने कृष्ण जब सात साल में हुए तब गिरिराज गोवर्धन के धारण करना पड़ा। इसलिए गोपियों की जो भगवान वर दिया था अगले साल पूर्णिमा में आप लोगों की मैं मनोरंजक आप लोगों के साथ रास किया, किंतु सात साल के समय संभव नहीं। इसलिए जब कृष्ण आठ साल में होने लगे सब उस समय कृष्ण गोपियों की मनोवांछा पूरा करने के लिए और जो वर दिया था उसी की स्मरण करके गोविंद गोपियों की जय आह्वान बुलाने लगे। इस आगे की कथा हम वर्णन करेंगे, थोड़ा कीर्तन हो जाए इस आगे कथा हम वर्णन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय
मुरलिया बाजी रे जमुना की थी, मुरलिया बाजी रे जमुना की थी, यमुना के तीर हो जमुना के
Thank you. चंद्रमा को दर्शन करके गोपियों की
दिव्य अपराजित मुखारविंद के उनकी बुद्धि बनाम होगा स्मरण होगा। इस भगवानों ने सारद उत्फुल्ल मल्लिका शरद काल ठंडी भी नहीं गर्मी भी नहीं और अनेक प्रकार पुष्प प्रस्फुटित हो गए विकसित हो गए सुंदर सुंदर भिरी भिरी सुगंध वायु जो है प्रवाहित होने लगे। ऐसे सुंदर सुशोभन समय में श्री कृष्ण ने कहते वे वंशी वादन करने लगे वंशी बजाने इसलिए हमने कह रही निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजम्न अनुर अन्न अलक्षित उद्यमा सजत्र कांतो जबला जबलोर कुंडला। कृष्ण जब वंशी वादन करने लगे वह समस्त गोपियां अपने अपने गृह कार्यादि त्याग देकर के बस गोविंद को दौड़ने लगे। कृष्ण जमुना के तट पर वृंदावन में बंसी पर जमुना के तट पर इतने सुंदर त्रिभंग ललित होकर के जब बंसी ध्वनि करने लगे ये ध्वनि और कुछ नहीं था केवल एक ही शब्द निकलने जैसे जिसे कहा जाते क्या क्लीन गोपियों के कान में प्रवेश करने लगे और गोपियां अपने अपने गृह कार्य आदि छोड़ करके बाद गोविंद दर्शन लालसा गोविंद दर्शन की लालसा और गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो कृष्ण गृहीत मानसा मानो कृष्ण वही वंशी ध्वनि के द्वारा उनकी मन को जो है अपहरण कर दिया और समस्त गोपियां दौड़ने लगी कोई पति सेवा कर रही थी रोटी बेल रही थी ब्रज की रीति होते हैं साथ ही साथ रोटी पकते हैं और एक चूल्हा में रसी सब्जी बनती है और दूसरी चूल्हा में रोटी पकाते हैं बेलते हैं और पति खाने के लिए बैठे एक रोटी पकाया और एक कलची सब्जी पति के पत्तल पर डाल दिया दूसरी रोटी बेल रही थी पकाने के लिए तवे में रखने के लिए इतने समय गोविंद के विरुद्ध ध्वनि सुनाई पड़ी बस वह कभी उस तवे में जो रोटी जो है वो रह गई और पीछे दरवाजा से निकल गए। पति सोचने लगे मेरी पत्नी जो है रोटी लेकर के आ गई कहां गई थोड़ा देखा गया रसोई घर में मानो आग लगी धुआं विदेश में होते तो वो रहता है क्या होते वो अलार्म बजते हैं ना छिछ पूरा बिल्कुल उधर चले जाते हैं दमकल वाहिनी आ जाता है पानी में इतने रसी घर में इतने धुआं धुआं कहां से आ गया अरे वही कहां गई धुआं कैसे देखा क्या पीछे दरवाजा खोला पीछे के दरवाजा और वो कहां निकल गई ताई नहीं इस समस्त सरस वर्णन भी दे कोई कभी आंखों में जो काजल लगा दी थी बहुत सरस श्रृंगार कर लिया सुंदर वस्त्र धारण कर ली एक आंख में काजल लगाई दूसरी आंख में काजल लगा रही थी इतने समय गोविंद के विरुद्ध ध्वनि सुनाई पड़ी बस रख दिया और चलना शुरू कर गोविंद गोविंद के सन्निकट में जब पहुंचे कृष्ण गोविंद कृष्ण वह कभी गोपियों के सुंदर वस्त्र अलंकार सब कुछ देखा कितने सुंदर रूप में सजाया केवल एक आंख में काजल और दूसरे आंख में काजल नहीं है। कृष्ण कहने लगी अरे गोपी अरे श्रृंगार तो बहुत सुंदर है सर श्रृंगार तुमने धारण किया सुंदर वस्त्र अलंकार ना कान में कुंडल है गले में सुंदर हार सब कुछ तो पहना पैर में तो नूपुर पहने बहुत सुंदर
पर एक आदमी काजल और दूसरे आदमी काजल नहीं की गोपियां के वो गोपी क्या उत्तर दे काई को सांसुंदर काई को बंसी बजाई मैं तो आ रही थी प्रिंस की इतनी सुंदर सुंदर भाव भी है कीर्तन भी है वो कभी कहने लगी अरे सब सुंदर मैं तो तुम्हारे लिए मैं श्रृंगार करके बैठी थी केवल से श्रृंगार रहेगी उन सब आंख में काजल लगाना एक आंख में काजल लगाई और दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए जा रही थी इतने समय पे बंसी बजी काई को बंसी बजी इसमें कृष्ण इस कथा को सुन करके रोने लगे दंडित हो गए स्वयं कृष्ण किसी गोपी के द्वारा काजल मंगाया और उस गोपी के आंख में काजल लगाया और जो अवशिष्ट जो काजल जो है एक पत्थर पर पहुंच गया आज तक भी जाए वह स्थान पर बज्रनाभ ने उस स्थान पर वो भी पत्थर रखा हुआ है अभी हम जाते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में स्मरण दिलाते हैं वहीं पर भी पत्थर रखा है जहां पर कृष्ण गोपी वह गोपी के आंख में काजल लगाए और अवशिष्ट काजल जो पत्थर पर पहुंचे ये कोई दिव्य ब्रज ये कोई साधारण धाम नहीं है दिव्य अपराजित और कोई कभी श्रृंगार कर रही थी जल्दी जल्दी श्रृंगार करने लगी अलंकार आदि पहन रही थी किंतु पता नहीं कौन सा अलंकार कहां पर लगा पैर के नुपुर गले में लगा और गले के हार कहां पहन लिए पैर में सब तरह सदिस्त हो कोई कब कोई कभी नीचे के वस्त्र पहन लिया लंगा पहन पहन ऊपर के वस्त्र पहन पहनने के जा रही थी आधा कपड़ा ऊपर के बख्तर पर लगाए कपड़े इतने समय गोविंद के वंशी ध्वनि सुनाई पड़ी और नाजरी वही रह गया उसी अवस्था में डूबने लगी कोई गोपी बच्चे के दूध पिला रही थी गोविंद के गोविंद ध्वनि सुनते ही बस बच्चे के छोड़ करके चल बोले गोविंद की वंशी ध्वनि की ऐसी महिमा क्या बनना सब गोपियां यही सोच रही है कृष्ण केवल मुझे ही बुला रहे क्योंकि वंशी धन के ऐसे विचित्र है जिसमें सब गोपी सोच रहे हैं मेरे नाम लेकर के पुकारे राधा सोच रही है मेरे नाम चंद्रावली सोच रही है मेरे नाम किंतु सब तो क्या निकल रही है जो हम लोग मंत्र जप करते हैं गोपाल मंत्र अथवा कामगंत्री के मंत्र जिस मंत्र में बीज मंत्र का है इसके क्लीन शब्द है कलम जग उपान मदिशा मनोहरण पहले गोपाल मंत्र के मंत्रराज कहा जाता है इस मंत्र के जप करने से हृदय में अपरिक्त दिव्य भाव उत्पन्न हो जाता है जिन समस्त प्रकार रोग सब से मुक्त होकर के चिन्मय शरीर प्राप्त करके भगवान की प्राप्त कर लेते वह गोपियां सोच रही है कृष्ण केवल मुझे ही बुला रहे दौड़ने में लगे देखो एक ही साथ में सैकड़ों गोपियां चल रही है साइड बाई साइड किंतु कोई किसी को नहीं देख रहे देख नहीं पा रही इसलिए कहते हैं ब्रज स्त्री कृष्ण गोपियां कृष्ण के सानिध्य में पधारी आगे कृष्ण मन मन विचार करने लगे वस्त्र ग्रहण के समय मैं गोपियों की दृष्टियों के दर्शन किए उनके हृदय मन को मैं दर्शन नहीं किया इनकी मन की कुछ परीक्षा ले लेता हूं इस समय कृष्ण गोपियों की हस्त परिहास करते हुए इतने कृष्ण कहने लगे हे गोपियों आप लोग सती साथी रमणी हो, आप लोग अपने अपने घर में लोट करके जा रहे ब्रजन नेसा घोर रूपा घोर सत्य निसेविता प्रतिजात ब्रजन नेम स्त्रियं श्री भी सुमध्यमान। ये गोपियों आप लोग तो देखने बहुत सुंदरी हो, युवती हो, रात्रि काल में जंगल में वन में रहना उचित नहीं। प्रजन नेसा घोर रूपा घोर सत्य निसेवित, ये मध्य रात्रि है। इस रात्रि काल में शेर आदि अनेक प्रकार के हिंसक पशु अभी आ सकते हैं, आप लोग आक्रमण कर सकते हैं। आप लोग स्त्री जाति हो, आप लोग के शरीर अत्यंत कोमल है, इसलिए आप लोग अपने अपने घर में लौट करके जा रहे हैं। और देखो दूसरी बात है, आप लोग देखने के लिए सुंदर ही हो, सुकुमारी हो, और मैं पक्का ब्रह्मचारी हूं, हमारे पास रहना उचित नहीं है। मन की पाप कहने बिकार हो जाए, इसलिए आप लोग सती नारी हो, आप लोग घर में लौट करके जाए। देखो कृष्ण भी बहुत सुंदर उदाहरण भी देने लगे, स्त्रियों के कर्तव्य क्या है, अपने पति को सेवा करना। पति ही परम देव, पति ही परमेश्वर, पति सेवा करना ही स्त्रियों की कर्तव्य है। जो स्त्री पति की सेवा नहीं करते इस जगत में उसके सुख नहीं है, और मृत्यु के बाद भी उसको सुख नहीं मिलता। पति को परम देवता मान करके भगवान भगवत स्वरूप मान करके सेवा करना चाहिए। पति यदि कर्कश भाषी हो, रूढ़ शब्द बोलने वाले, अथवा पति यदि दरिद्र हो, अथवा पति यदि रोग शोक में ग्रस्त हो, तथापि सती नारी अपने पति के जो है त्याग नहीं देती। पति सेवा के द्वारा ही वो परम पति को प्राप्त कर रहे थे। कृष्ण सुंदर सुंदर गोपियों के उदाहरण दिए, कृष्ण एक सुंदर उदाहरण दिए। देखो पति सेवा के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पति परम देव। एक ब्राह्मणी थी, वह ब्राह्मण कोई इंडस्ट्री में काम, और काम करके शाम के समय लौटे, और उन तो उनके अपने पुत्री के कहने लगी, देखो ब्राह्मणी आज मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ, एक काम करो, मेरे खाना खाने पीने का इच्छा नहीं है, तुम तो खाना बनाए बहुत अच्छी बात है, एक काम करो, मैं मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ, मेरे सिर को तुम मसाज कर दो। किंतु एक शब्द है क्या, मैंने जो सिरहाना सिर जो है तुम्हारे गोद पर रखा हूं, और तुम मेरे सिर को दबाओ। विश्व ब्रह्मांड की कुछ भी लड़ाई पड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब मैं सो जाऊंगा जगाना मत, मानो मैं उस इंडस्ट्री में दो तीन दिन से मैं काम कर रहा था, सोए नहीं, आज मेरा नींद आ गई। लड़ाई पड़े ब्रह्मांड भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे जगाना मत। ब्राह्मणी कहने लगे, सभी ब्राह्मणी कहने लगे, हे पतिदेव जैसे आपके आदेश ऐसे पालन करो। ऐसे घर में वो ब्राह्मण वो अपने पति के गोद पर जो अपने सिरहाना रख करके सो, और पत्नी अपने पतिदेव के सिर को मसाज दबाने। किंतु उनके छोटा बच्चा था, 3-4 महीने का बच्चा था, और निकट में चूल्हे में आग धक धक करके जल रही सब्जी बना रही थी, और अपने छोटे बच्चे को बिल्कुल चूल्हे के पास ही रख दिया था, और छोटे बच्चा आग में खाना समझ करके पेट के सहारा से, छोटे बच्चा होते हैं ना, पेट के सहारा से घिसकते 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 आग की तरफ चले। देख रही है, थोड़ी मानो दो चार इंच रह गया, बालक चूल्हे में जाकर के ना गिर जाए। ब्राह्मणी देख रही है क्या करे, पति बात को पालन करे कि अपने छोटे बच्चे चार महीने की चार छह महीने की बच्चा जो है उसकी रक्षा करे। आज महासंकट में पड़ गई है। पति के बात रक्षा करना है कि पुत्र जो छह महीने चार महीने छोटे बच्चे महीने बड़े बच्चे उसकी रक्षा करना है। ये संकट समझ में आ रहे। आज वो ब्राह्मणी विचार करने लगे, हमारी आज एक परीक्षा के घड़ी है, क्या करें? पति के बात को पालन करें कि बालक की रक्षा करें? ब्राह्मणी विचार करने लगे, वेदों में शास्त्र में कहा गया पति परम देव, पति के बात को पालन करना चाहिए। इसलिए वो ब्राह्मणी अपने पतिदेव के सिराने सिर के अपने बोल रखा, यदि नीचे कर दे पति ना जग जाए। पतिदेव ने कहा गया विश्व ब्राह्मण में लड़वाई भी हो जाए कुछ भी हो जाए मुझे जगा देना। देखते देखते वो बालक छोटे जो बालक चार महीने के बालक पेट के सहारे पर घिसकते जाकर के बिल्कुल वो चूल्हे में गड्ढे में गिर गए। ब्राह्मणी देख रही है क्या करेगा, शीर्ष शीर्ष के रो रही है। पति बात को पालन करें, सती नारी पति बात को पालन करें। इतने समय ब्राह्मणी के ब्राह्मण जग गए। ब्राह्मण जाकर के कहने लगे, ब्राह्मणी तुम क्यों रो रही, क्यों क्या बात हुई? कहने लगे पति देव आपके वचन रक्षा करने के लिए मेरे बालक जो है अग्नि में स्वाहा। ब्राह्मण कहने लगे तुम मुझे क्यों नहीं जगाया? नहीं आपने वचन अपने आपको वचन दिया, आपने कहा कि इस ब्रह्मांड का वध भी हो जाए कुछ भी हो जाए मुझे जगाना ना, इसलिए मैंने आपको जगाया। यदि आपके सिरान के मेरे गोद से नीचे रख देते जित आप जग जाते तो पति वचन को नष्ट हो, मैं सतीत्व को नष्ट कर, इसलिए मैंने आपको जगाया। ब्राह्मण कहने लगे हे ब्राह्मणी तुम सभी नारी हो, मैं कहता हूं देखो अग्नि के पास जाओ, बच्चन बाल तुम्हारे बालक की जो है वो लुटा। उस समय ब्राह्मणी चूल्हे के पास अग्नि के देखा क्या वास्तव रूप में सच्चात अग्नि ने प्रकट हुए और अपने बालक के गोद में रखा, बालक के आंख अग्नि आग की कुछ आज तक भी कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। और बालक मानो अग्नि देवता के गोद पर बैठ के खेल और साक्षात अग्निदेव कहने लगे हे सती नारी ब्राह्मणी तुम्हारे सतीत्व के मैं दे पति सेवा की फल क्या है पुत्र के लिए। कृष्ण उसी प्रकार कहने लगे हे गोपियों पति सेवा ही परम धर्म, पति सेवा के द्वारा ही सती नारी असंभव के संभव कर लिया। हे गोपियों आप लोग घर लौट करके जाए पति सेवा करें। भगवान कृष्ण ने इसी संदर्भ में अनेक श्लोकों के द्वारा वर्णन किया है, समय समय से होने के लिए काम को उठाया। एक ही श्लोक आधा श्लोक तो मैंने कहा अभी तक अभी पूरा नहीं हुआ, तब गोपियां इस कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न हुई। गोपियां कहने लगी हे गोविंदर तुमने तो पति की सेवा के बहुत सुंदर उदाहरण दिए, हम भी तुमको एक कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी, उनके भी पुत्र करना नहीं था, मानो अभी एक साल डेढ़ साल शादी हुई। वह ब्राह्मणी खाने में सोने में पति की सेवा, जब तक पति खाने में भोजन नहीं करे पत्नी तब तक भोजन नहीं करती, मानो दोनों ही पति पत्नी की इतने सुंदर माधुर्य प्रेम व्यवहार का जहां जहां पर पति जाते थे पत्नी उन पर जाती थी। पति पत्नी देखो ये पता कौन बोल रहे हैं, याद है कौन बोल रहे हैं? गोपियां कृष्ण की सुना रहे हैं। पहले कथा तो कृष्ण गोपियों की सुनाती, अभी गोपियां कृष्ण की सुना रही है। ये देखो वो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत प्रेम करते हैं, अभी उनके पास कोई वर अच्छा नहीं। और वो ब्राह्मणी पोती देव के सब कुछ देकर के सेवा करते। एक दिन राजा के आदेश हुई, हे ब्राह्मण तुम्हें 7 दिन के लिए दूर देश में जाना पड़ेगा। ब्राह्मण आकर के पत्नी के कहने ये देखो राजा के राज आदेश हुई, मुझे 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी रोने लगी, मैं ही जाऊंगी, किंतु राजा ने क्या आदेश दिया, तुमको अकेले जाना पड़ेगा, किसके साथ नहीं, पति के पत्नी के साथ लेकर के नहीं, अकेले जाओ और 7 दिन के बाद तुम्हें लौटना पड़ेगा। ब्राह्मणी को बिल्कुल रोना शुरू कर, मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, कैसे आपकी सेवा करूंगी, आपकी सेवा बिना मैं नहीं रह सकता। ब्राह्मण कहने लगे, हे ब्राह्मणी एक बात सुनो, मैं एक अपने मूर्ति से प्रतिकूल लकड़ी की मूर्ति तुम कर, ये मूर्ति जो है विग्रह जो है मेरे स्वरूप समान जान करके उसकी सेवा करना, मैं जब तक लौट करके नहीं आ जाऊं तब तक उसकी सेवा करना। और दरवाजा बंद करके रखना, 7 दिन बाहर मत जाना और उसके मुख दर्शन करना, जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाऊं दरवाजा भी खोलना नहीं। तो दीदी और पतिदेव ने अपने एक मूर्ति का जो है लकड़ी की मूर्ति, वो ब्राह्मणी एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन मूर्ति का सेवा करने, जैसे पुजारी विग्रह की सेवा करने। दरवाजा बंद है और उदिगे जैसे रसी बना करके खिलाते हैं, जैसे खिलाते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति यही है। जैसे रामचंद्र जब शयन करते थे तब उस समय मां जानकी उनकी भी सेवा करती थी, ठीक उसी प्रकार विग्रह के जो है वो ब्राह्मणी पति मान करके सेवा करती थी। किंतु आश्चर्य की बात है, 7 दिन के बजाय वो ब्राह्मण 5वां दिन के दिन आ गए, काटस्मान तो हो गए, बोला था तो 7 दिन के लिए, पांचवा दिन में आकर के जब उस समय ब्राह्मणी वह जो विग्रह अपने पति के जो विग्रह है सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी, मानो खिला रही, और इतने समय ब्राह्मण आकर के दरवाजा खटखटाने लगे, ब्राह्मणी दरवाजा खोलो। गोपियां प्रश्न पूछने लगी, हे गोविंद आप ये बताइए, वो जो सती सती उनके क्या करना, कर्तव्य क्या है, क्या करना है, विग्रह सेवा छोड़ करके अपने पतिदेव के लिए दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना है, क्या करना है आप वो बताओ। कृष्ण धर्म के संरक्षक है, वेद पुराण उपनिषद जो कुछ भी निकले कृष्ण के मुख निश्चित वाणी शास्त्र में लिखा गया, कोई विग्रह सेवा कर रहे हैं पर गुरुजी के मूर्ति में सेवा कर रहे हैं, और उस समय जिस साक्षात गुरु आ जाए क्या करना चाहिए, विग्रह सेवा छोड़ करके गुरु के लिए सेवा में जाना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता है, विधि विधान है। कोई पुजारी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कोई चक्र के संत महात्मा आ गए, क्या करना चाहिए, विग्रह से बात छोड़ करके उनको आमंत्रित करना, नहीं तो अपराध हो जाता है। जिसके फलस्वरूप उदाहरण देते समान आपको जो उदाहरण दे रहे हैं, अगस्त ऋषि आगे उनके आश्रम में इंद्रदुम्न महाराज के आश्रम में, उस समय इंद्रदुम्न महाराज से विग्रह सेवा कर लेते और ऐसी उच्च कोटि के संत महात्मा पधारे और विग्रह सेवा करने लगे, संत महात्मा आदर नहीं किया, बैठने की आसान नहीं किया, ना उनके कुछ आदर अपन किया, अगस्त ने विषाद दिया, तुम विग्रह सेवा करो, संत महात्मा मेरा अनादर कर, जब हाथी जैसे चलते हैं सब किसी के डर नहीं, तुम हाथी के बाकी जब हस्ती जनी प्राप्त करो, कहा मनुष्य शरीर और उनको हाथी जन्म दिया। और वही इंद्र तुम महाराज श्रीमद भागवत में कहते हैं क्या होगा, क्या हुआ गजेंद्र होकर जन्म दिया। हे अवस्थ ऋषि कृपा करके बोले जाओ स्वयं भगवान विष्णु तुम्हें को हाथी जनी से उद्धार करेंगे, ये समस्त प्रमाण है। तो गोपियों आइए कथा में समय नहीं, तो गोपियों नित्य कभी को आगे नहीं, गोपियां इसी प्रकार की कहने लगी गोविंद आप बताओ तुमको क्या करना चाहिए। गोविंद ने उत्तर दिया हे गोपियों मैं हार गया, वास्तव में सत्य है वह विग्रह सेवा छोड़ करके अपने जो पति की सेवा करना चाहिए। गोपियां ने उत्तर दिया हे गोविंद एक बार बता दो, एक पति होता है इस संसार में जो विवाह करते हैं, एक पति होता है ना और एक होता है क्या परम पति, याद रखिए कथा में गोपियां कृष्ण के कैसे हराया है, एक होता है पति और एक होता है परम पति। इस संसार में जो विवाह भी करते हैं एक होता है पति पत्नी संबंध है, ये पति पति के संबंध जब तक देह रहता है तब तक संबंध है, देह छूट जाए पति पति के संबंध नहीं रहता। और एक उनमें परम पति कौन है, परम पति परमेश्वर भगवान वो हमारे नित्य परम पति है। इसमें उनके क्या कहा जाता है जगन्नाथ, नाथ शब्द के अर्थ होता है पति, जगत पति जगन्नाथ, जगन्नाथ जगत पति को सेवा छोड़ करके दूसरे की सेवा में जो लग जाते हैं उनके लाभ क्या होता है, उस लाभ ही नहीं। कृष्ण गोपियां कहने लगी हे गोविंद आप हमारे परम पति हो, परम पति परम परमेश्वर परम पति हुआ, आपकी सेवा बिना हम कहां जाए। गोपियां सुंदर रूप में कृष्ण के हराया और अनेक श्लोकों के द्वारा गोपियां अपने मन की भावना को व्यक्त की। इस कथा सुन करके कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, अंत में कृष्ण गोपियों के साथ रास करने लगे, लीला आदि करने लगे। इस कथा में श्री सुखदेव गोस्वामी पात्र बहुत सुंदर रूप में वर्णन कर दिया है और गोपियां विराजमान हुई और सुंदर रूप धारण करके नृत्य आदि करने लगे। बीच में राधा जी विराजमान है और चारों तरफ समस्त गोपियां नृत्य आदि करने लगे। उस समय भगवान भी अनंत रूप धारण करके समस्त गोपियों के साथ विहार आदि करने लगे। ये तो हमारे आभिषण चक्रवर्ती पाद कहते कृष्ण नृत्य कला में इतने कुशल है, सब कुशल है, एक ही साथ अत्यंत द्रुत गति है, जल्दी जल्दी एक गोपी से दूसरी गोपी बस जा रहे हैं। सब गोपियां सोचने लगे कृष्ण हमारे पास है, इसी को हो गया समस्त गोपियों के क्या हो गई, क्या हो गई सौभाग्य का मत, ये गोविंद हमारे पास है, गोविंद हमारे पास है। और बीच में राधा जी देखा क्या कृष्ण कैसे छद है कपट है, कहते हैं ये राधे तुम तो हमें छोड़ करके कुछ नहीं है, किंतु कैसे छद कपट कृष्ण दूसरे गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। एक मत श्रीमती राधिका देखा उसने राधा जी की क्या हुई मान मानवती होकर के श्रीमती राधिका नृत्य करना बंद कर दिया। राधा जी की जब नृत्य बंद हुई भगवान विचार करने लगे वह समस्त गोपियों की सौभाग्य मत नष्ट करना और राधा जी की मान मनाना पड़े। इसलिए भगवान कृष्ण रासस्थल से कैसे अंतर्ध्यान हुए प्रसमान प्रसमानाय तत्रादि अंतर दियते केशव। सो देखो सेंटर इतनी श्लोक बोल दिया वस्तु में सब गोपियों की मान मर्दन करने के स्वभाव को मान मर्दन करने के लिए और राधा जी की मान मनाने के लिए अलक्षित रूप में राधा जी की भी बलात्कार करके लेकर चले गए। जब कृष्ण राज से अंतर्धन हो गए और वो समस्त गोपियां देखे थे कृष्ण है बस राज बन गए। अनंतर वह गोपियां क्रोध करने लगे और इधर कृष्ण राधा जी के लेते जमुना की पुलिनी में पधारे सिंगार वट में राधा के सिंगार कराए उनके साथ अनेकों प्रकार के प्रेम विहार और वो समस्त गोपियां कृष्ण विरहित ग्रहणित होकर के दुखित होकर के पेड़ पौधे आदि भी पूछने लगे गोविंद दर्शन। अनंत कृष्ण गोपियां वह सिंगार वट के निकट जब आने लगे और राधा जी देखी मेरी गोपियां जो है मेरे लिए जो समर्पित आत्मा है और गोविंद के लिए विरह प्राप्त हुई इसलिए राधा जी जान बुझ करके कहने लगे ये गोविंद मैं इस स्थान को छोड़कर जा नहीं सकता। कृष्ण कहने लगे देखो इस स्थान को छोड़कर ले जाना चाहिए किंतु कृष्ण राधा जी कहने लगे हम चल नहीं सकते। तो कृष्ण कहने लगे ये काम करो मेरे काम पर बैठ जाओ। कृष्ण अपने कान को नीचे झुकाया राधा जी बैठने के लिए प्रयास की इतने समय कृष्ण राधा जी से अंतर्ध्यान और कृष्ण जब राधा जी से अंतर्ध्यान और राधा जी गृह में कर्म काल से काल से महा इसी प्रकार राधा जी रोना और समस्त गोपियां वहीं पर आई चंद्रावली विपक्ष आदि गोपियां और राधा के चरण चिन्ह के समझ नहीं पाई थी और कृष्ण के चरण चिन्ह में देखा और उस कृष्ण के चरण चिन्ह के पास ही सुंदरी एक सुकमल स्त्री के चरण चिन्ह के देख करके दे भगवान जन्मो विहाय गोविंद जत जगन्नाथ। चंद्रावली सिख कहने लगे देखो जिस सखी के साथ कृष्ण प्रेम विहार वो कैसे सुना। इस प्रकार चंद्रावली आदि राधा की महिमा वर्णन की और अंतर समस्त गोपियां जमुना पुलिनी में आकर के कृष्ण विरह में तड़पते तड़पते कृष्ण की गुणखान वितरकणि से वो विगित कर दे समय में काल वर्णन करेंगे। इसके पश्चात कृष्ण गोपियों के ऐसे विरह देख करके उस रसस्थली में प्रकट हुए और गोपियां अपने अपने चुंदरी के आसन को दिया और कृष्ण के साथ कुछ प्रश्न आदि करने लगे। इस कथा हम आगे वर्णन करेंगे। इसके पश्चात कृष्ण पुनः गोपियों के साथ राजगृह आदि करने लगे जिस कथा आज हम ये दर्शन के आप लोग दर्शन कैसे कृष्ण गोपियों के साथ राजगृह राज के साथ गंदी बदले राज के कहते हैं लिप्त गीतम इति रास राष्ट्र शब्द पर प्रवर्तन होता है जहाँ पर आनंद की लहरियां चलती है प्रेम की लहरियां चलती है। बोलो राधा रानी की जय जय श्री राम। इसके पश्चात आगे कथा आगे हम काल कीर्तन करेंगे। काल अंतिम दिन है भागवत कथा की इसलिए सभी की करबद्ध निवेदन है और समय पर आप लोग आने की कृपा करें।
बोलो श्रीवृंदावन बिहारी लाल की।